नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। संघर्ष के दौरान यौन हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत प्रमिला पैटन ने सोमवार को कहा कि यूक्रेन में यौन हिंसा, खासकर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हुई ऐसी घटनाओं की सही तरीके से जानकारी नहीं दी गई। पेटन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि संघर्ष के दौरान बलात्कार व अन्य यौन हमलों को रोकने के उसके प्रस्तावों और सबसे संवेदनशील महिलाओं तथा बच्चों की जमीनी स्थिति के बीच काफी अंतर है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय को 3 जून तक संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा की 124 शिकायतें मिली, जिनमें से 97 महिलाओं में पीड़ित महिलाएं तथा लड़कियां, 19 मामलों में पुरुष और 7 मामलों में लड़के थे, जबकि एक मामले में पीड़ित के बारे में जानकारी नहीं हासिल हो पाई है। मामलों की पुष्टि करने का काम जारी है। पेटन ने कहा कि यूक्रेन के अभियोजक जर्नल ने मई में एक यात्रा के दौरान उन्हें सूचित किया था कि एक राष्ट्रीय हॉटलाइन ने 24 फरवरी से 12 अप्रैल के बीच संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा के दर्जनों ऐसे मामलों की जानकारी दी है, जिनमें बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार के बाद गर्भधारण, बलात्कार का प्रयास, बलात्कार की धमकी, पीड़िता के साथी या बच्चों को उसके खिलाफ यौन हिंसा के कृत्य को देखने के लिए मजबूर करना और जबरन कपड़े उतारना शामिल है। श्रीलंकाई मंत्रिमंडल ने संविधान के 21वें संशोधन पर सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों के कड़े विरोध के बाद उसे एक सप्ताह के लिए टाल दिया है। इस संशोधन के बाद संसद को राष्ट्रपति से अधिक शक्तियां और अधिकार मिल जाएंगे। संविधान के 21वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 20A को निरस्त किए जाने की उम्मीद है, जो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। श्रीलंका में प्रस्तावित संशोधन का मसौदा सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में पेश किया गया। सांसद चरिथा हेरथ ने संवाददाताओं से कहा, सभी पक्षों के प्रस्तावित संशोधनों पर सहमत होने के बाद ही इसे मंजूरी देने का फैसला किया गया है। इसे अब अगले सप्ताह मंत्रिमंडल की बैठक में पेश किया जाएगा। सत्तारूढ़ श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना पार्टी का एक वर्ग मौजूदा आर्थिक संकट से निपटे बिना 21वां संशोधन लाने के खिलाफ है। SLPP महासचिव सागर करियावासम ने कहा, सभी आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। हमें राजनीतिक समाधान करने से पहले आर्थिक मुद्दों को सुलझाने के बारे में सोचना होगा। संवैधानिक मामलों के मंत्री विजयदासा राजपक्षे को उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल सोमवार को 21वें संशोधन को मंजूरी दे देगा। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को अपनी प्रधान ब्याज दर को 5 सप्ताह में दूसरी बार बढ़ा दिया, जिसके बाद नकद दर 0.35% से बढ़कर 0.85% हो गई है। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने 3 मई को अपनी पिछली मासिक बोर्ड बैठक में दर में 1/4% की वृद्धि की थी। अप्रैल में जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की मुद्रास्फीति बढ़कर 5.1% हो गई। इसके बाद से ही दर में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही थी। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने ब्याज दर में और बढ़ोतरी की आशंका जताई है, क्योंकि फिलहाल वहां महंगाई कम होने के आसार नहीं हैं। न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होचुल ने गोलाबारी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनज़र एक नए कानून पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत प्रांत में अब 21 साल से कम उम्र के लोग अर्ध स्वचालित राइफल नहीं खरीद पाएंगे। न्यूयॉर्क अमेरिका में गोलाबारी की घटनाओं को रोकने के लिए ऐसा बड़ा कदम उठाने वाला पहला प्रांत है। होचुल ने सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी 10 विधेयकों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से एक के तहत नए आग्रेयास्त्रों पर माइक्रो स्टैम्पिंग की आवश्यकता होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कानून के लागू होने से बंदूक संबंधी अपराधों में कमी आएगी। एक अन्य संशोधित कानून के तहत अदालत को उन लोगों के पास से अस्थायी रूप से बंदूक अपने कब्जे में लेने का अधिकार मिल गया है, जो खुद या दूसरों के लिए खतरा हो सकते हैं। होचुल ने ब्रोंक्स में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, न्यूयॉर्क में हम कड़े कदम उठा रहे हैं, हम कानूनों को कड़ा कर रहे हैं ताकि बंदूकों को खतरनाक लोगों से दूर रखा जा सके। न्यूयॉर्क के विधानमंडल ने पिछले सप्ताह इन विधेयकों को पारित किया था। गौरतलब है कि बफेलो सुपरमार्केट में 14 मई को एक नस्ली हमले में 10 अश्वेत लोग मारे गए थे। वहीं इस घटना के 10 दिन बाद 24 मई को टेक्सास के एक स्कूल में हुई गोलाबारी में 19 बच्चों और 2 शिक्षकों की मौत हो गई थी। विवादों में घिरे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव जीत लिया। कंजर्वेटिव पार्टी के 211 सदस्यों ने उनके पद पर बने रहने के पक्ष में मतदान किया, जबकि 148 ने उनके खिलाफ वोट किया। जॉनसन ने कहा कि ये मतदान व्यापक रूप से उनके पक्ष में रहा, क्योंकि 41.2% के मुकाबले 58.8% ने उनके पक्ष में मतदान किया। हालांकि इन परिणामों के बाद उनके विरोधियों को उनकी आलोचना करने का मौका मिल गया है, जबकि उनके समर्थकों का कहना है कि परिणाम दिखाते हैं कि पार्टी के अधिकतर सदस्य उनके साथ हैं। परिणाम आने के बाद जॉनसन ने कहा, मुझे लगता है कि राजनीति और देश के लिए ये एक बेहद अच्छा परिणाम है। उन्होंने कहा, ये एक बेहतर निर्णायक परिणाम है, जिसका मतलब है कि एक सरकार के तौर पर हम आगे भी काम करना जारी रख सकते हैं और उन चीज़ों पर अधिक ध्यान दे सकते हैं जो लोगों के लिए वाकई मायने रखती हैं। मुझे अपने संसदीय सहयोगियों से 2019 की तुलना में कहीं अधिक बड़ा जनादेश मिला है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।